सर ये सांस की मशकों की जो है रूहानियत में कितनी अहमियत है, और कौन सी सांस की मशकें जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाशौर प्रेजेंट करने की?
ये इतना बुनियादी सवाल है, इतनी बुनियादी बात है। देखें, अगर हम सांस नहीं ले रहे तो हम क्या क्या ला रहे हैं? डेड बॉडी। यानी हमारी जिंदगी का इन्हिसार और कायम सांस पे है। आप इससे अंदाजा करें कि अगर हम सांस नहीं ले रहे तो हम मुर्दा हैं। तो अगर हम सांस पूरा और गहरा लेंगे तो हम पूरी तरह जिंदा होंगे, और अगर हम सांस उथला और सतही लेते रहेंगे तो हम क्या हुए भाई? हम बस गुजारे लायक ही जिंदा हैं, बस जस्ट लिविंग। तो उसके लिए मतवज्जो किया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मतलब अल्लाह के भेजे हुए नबियों ने, कि भाई सांस तो पूरा लो। अब वो इंसानी शऊर बाज नहीं आता, तो उसको मतवज्जो करने के लिए फिर ये मशकों का एहतमाम किया गया। सबसे पहले ये योगा में मुतारिफ हुई, जो कि 4-5 हज़ार साल पुराना इल्म है। लेकिन क्या हुआ, किसी ने सांस लेना सीख लिया? आंसर इज नो। तो वो मशकें करवाई जाती हैं, यानी कि सांस को इनहेल करना, अंदर लेना, रोकना, फिर निकालना। फिर इसके मुख्तलिफ जाविये बना दिए कि भाई आप सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लें, 5 सेकंड में लें, फिर उसे 10 सेकंड कर दें, 15 सेकंड कर दें, 20 सेकंड कर दें। यानी 20 सेकंड लगा के आप सांस इनहेल करें, फिर इसको रोकने की ड्यूरेशन को बढ़ाएं, 5 सेकंड से 10 पे ले जाएं, 10 से 15 पे ले जाएं, 15 से 20 पे ले जाएं, 30 पे ले जाएं, 40 पे ले जाएं, फिर एक्सहेल करने की ड्यूरेशन बढ़ाएं। तो जो भी मश्क, इसी तरह चौथी मश्क है कि एक नथने से सांस लें, उसे रोकें, नथने को उंगली और अंगूठे से बंद कर दें, उसके बाद दूसरे नथने से निकालें 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 आहिस्ता आहिस्ता, फिर उस दूसरे नथने से लें, उसे रोकें, फिर एक्सहेल कर दें पहले नथने से। तो ये 4-5 किस्म में हैं। फिर एक सांस की मशक है फास्ट ब्रीदिंग की, एक्सहेल करें, सिर्फ 1 सेकंड में एक सांस लें, यानी इस तरह करके बाहर फेंकते जाएं। तो ये 4-5 मशकें जो हैं, इनमें से जो भी आप अपना लें, हर मशक के तेहरे फायदे। पहला फायदा फिजिकल है कि जिस्मानी निजाम मजबूत होता है, आप जिस्म में ऑक्सीजन पूरी दाखिल होती है, फेफड़े पूरे ताकतवर होते हैं, नमूनिया नहीं होता, कोविड नहीं होता। ये जिस्मानी फायदे हैं। ज़हनी फायदे ये हैं कि आपकी विल पावर बढ़ती है, और रूहानी फायदा ये है कि हजूर कलंदर, हजूर मुर्शिद करीम ने किताब कलंदर शऊर में वा शगाफ लिखा है कि सांस की मश्क से आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस पे गौर कीजिए। होता यह है कि जब हम किसी बीमार होते हैं तो हमारा यकीन या हमारा शऊर उस बीमारी को पकड़ लेता है, उससे लिपट जाता है, उसको चिमटा होता है। अगर आपके अंदर सांस लेने की शक्ति होगी, ताकत होगी, कुव्वत इरादी होगी, तो आप उस इरादी ताकत से बीमारी को छोड़ के सेहत को पकड़ लेंगे। ये सारा ज़हनी प्रोसेस है। तो गोया इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये सांस कितना जरूरी फैक्टर है। ये जिंदगी की बिना है, जिंदगी की बुनियाद है। बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको थप्पड़ मार के रुलाते हैं, यानी रुलाते नहीं है, ताकि वो झटका खा के सांस लेना शुरू कर दे, और उसके बाद जब तक ये सांस चलता है हम जिंदा रहते हैं, जब सांस बंद हो जाता है हम फौत हो जाते हैं। इसलिए सांस को जितना आप लंबा, गहरा और देर तक लेंगे, आपकी सलाहियतें उतना उभरेंगी। अब हमें ये बात समझ आती भी है लेकिन नहीं आती। हम इंतज़ार करते हैं कोई हमें एक्सरसाइज बताई जाए तो हम वो एक्सरसाइज करें, तो वो फिर होता है कि एन एक्सरसाइज के वक्त कुछ और याद आ जाता है, अच्छा चलो ठहर के करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये सब शऊर की मज़ाहमतें होती हैं। इसलिए इसको हटाने का बेहतरीन तरीका मेरा ख्याल ये है कि हम दिन रात जब जब ले सकें सांस पूरा लें, जब जब लें सांस पूरा लें। इसका अच्छा तरीका ये, हाथ में तस्बीह रखें, एक सांस आराम आराम से इनहेल करके पूरे फेफड़े भर के रोकें और मुंह के रास्ते निकाल दें और एक दाना गिरा दें। इस तरह वक्फे वक्फे से चलते फिरते कम से कम 300 सांस तो ले लो पूरे। अब देखे ना, हम दिन भर में 28,800 सांस लेते हैं 20 की एवरेज से, एक मिनट में हम 20 सांस लेते हैं, लेकिन उथले। मैं क्या कह रहा हूं, 1% तकरीबन 288 बनते हैं, तकरीबन 300 सांस पूरे ले लें। आप देखें कि आपकी सलाहियतों में कितना इजाफा होता है। तो ये समझ आ गई कि सांस के तीनों दर्जों पे फायदे हैं, मादी दर्जे पे भी, जिस्मानी दर्जे पे भी, जहनी दर्जे पे भी। इससे आपकी साइकिक पावर्स बढ़ती हैं, जितना दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है उतना आपकी साइकिक सलाहियतें इजाफा होता है, और उसके बाद रूहानी सलाहियतों में भी इजाफा होता है। आपके इर्तकाज़े तवज्जो की सलाहियत बढ़ती है ना, जब इर्तकाज़े तवज्जो की सलाहियत बढ़ेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेलीपैथी भी आ जाएगी, तो ख्वाब भी याद रहेंगे।
जी सर,
काफी है
सर। ये थोड़ा सा सर और, ये के आपके एक्सपीरियंस में जो है सांस को लंबा जो है करने की क्या टिप्स है?
सांस को लंबा करने की क्या
सर कोई टिप बताएं कि इंसान जो है अपने सांस को लंबा अंदर रोकने का जो दुरानिया जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके?
नहीं, मतलब है ये तो विल पावर है ना। हजूर मुर्शिदे करीम ने किताब कलंदर शऊर में लिखा है कि सांस को अंदर लेना सांस की सऊदी रोक है। सांस का सऊदी रुख है यानी कि जब आप अंदर सांस लेते हैं तो आपका ताल्लुक आपके इनर सेल्फ से यानी आपके खालिक से जा जुड़ता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सांस को आप जितना आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेंगे उतनी ज्यादा देर आपका ध्यान आपकी तवज्जो आपके इनर सेल्फ की तरफ होगी। अब रह गई बात सांस को अंदर रोकने की। देखें ये शुरू में आप जितना भी सहूलत से रोक सकें, घड़ी को देखें कितनी देर रोक सकते हैं, फर्ज करें हमने 5 सेकंड रोका, एक पूरा दिन 5 सेकंड रोकने की मशक करते रहें, अगले दिन जब आप करेंगे देखेंगे कि आपकी सलाहियत खुद ब खुद बढ़ के 6 सेकंड पे चली जाएगी, यानी ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं। ये विल पावर का इस्तेमाल है, जितना आप इन विल पावर को इस्तेमाल करके करेंगे उतनी आपकी सलाहियतें बढ़ेंगी। करते करते ये रफ्तार मतलब 10 सेकंड पे चली गई, अब आप इसको 10 सेकंड की प्रैक्टिस करते रहें एक महीने में देखें तो आपके बाद दिल करेगा कि मैं इसको 15 सेकंड तक रोकूं। ये आपकी तवानाई में इजाफा होता जाएगा, इधर आप इसकी टाइमिंग को इंक्रीज करते जाएं, बशर्ते कि आप बाकायदगी से करें तो सही। ज्यादा अच्छी बात यह कि भी कोई टाइम वक्त मुकर्रर करके करें, नहीं होता जब वक्त मिले करें। बस एक एहतियात करें, खाने के फौरन बाद ना करें, खाने के फौरन बाद ये मना किया जाता है क्योंकि मैदा उधर बिजी होता है, दौराने खून मैदे की तरफ होता है, उसको उधर ही रहने दें वरना वो फिर तबीयत खराब हो सकती है।
इसे 3 घंटे बताते हैं कि खाने के बाद जो है सांस की मुश्किल है।
जी।
और सर ये सांस लेने का और सांस निकालने का दुरानिया एक जैसा करने में कोई है
जी मैं अर्ज करता हूँ। देखें ये जो सांस
दोनों
के माहरीन है ना योगा वाले, उन्होंने इसकी ड्यूरेशंस रखी हैं, रेशोज रखी हैं। मसलन 1 2 1, यानी 5 सेकंड सांस अंदर लें, 10 सेकंड रोकें, 5 सेकंड में निकाल दें, ये 1 2 1 कहलाई। अब आप अपनी रेशो खुद मुकर्र करें कि 1 2 3 कर दें, यानी 1 रेशो से खींचो, 5 सेकंड में खींचा, 10 सेकंड रोका, 15 सेकंड में निकाला, तो ये 1 2 3 की रेशो कहलाई। अब आप इसको रिवर्स कर दें कि आप 15 सेकंड सांस अंदर खींचें, 10 सेकंड रोकें, 5 सेकंड में निकाल दें। ये सारी रेशोज आपने खुद अपने लिए अपॉइंट कर सकते हैं। इसको भूल जाइए, ये जो हमें दुकानदारियां सजी हुई हैं ना, जो चूरन बेचने वाले लोग हैं वो अपने ड्रामे रचाते हैं, या आप यूं करें, आप वो करें। ओ भाई मेरा जिस्म है, मेरी सलाहियत है, मुझे पता है, वाई कैंट आई अपॉइंट अ रेशियो फॉर माई सेल्फ है, जिसमें आपको सहूलत लगे, जिसमें आपको पता चले कि मैं रफ्ता रफ्ता ग्रो कर रहा हूं, आप इसको इंक्रीज करते जाएं। आप ये रेशो 1 3 2 कर दें, 2 3 और 1 कर दें। आप इसको चाहे, मतलब ये मेन रेशोज हैं, ये मेन रेशोज हैं। अब वो यूनिट 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, आप जितना मर्जी बढ़ा लें। अब अगर 15 सेकंड में आपने इनहेल किया, 30 सेकंड रोका और उसे 15 ही सेकंड में निकाल दिया, तो ये 1 2 1 की रेशो हो गई। इन रेशोस की प्रैक्टिस करें, खुल के सोचें, खुल के खेलें, ठीक हो गया?
जी सर।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
नाम कर कैसे हैं?
जी अल्लाह का इनाम है।
बहुत अच्छा समझाते हैं आप, बहुत अच्छा समझाते हैं आप, जहन में लगे जाले हट जाते हैं,
अल्लाह का इनाम,
और आसानी से समझ में आ जाता है। जी मेरा सवाल था कि ना, जब मुर्शिद करीम बैत करते हैं किसी भी शख्स को, तो उसमें क्या सलाहियत देखते हैं, जिसकी वजह से हर एक को बैत लिखी जाता, किसी किसी को बैत किया जाता है?
असल में वो सिर्फ तलब देखते हैं कि ये बंदा इंसान का बच्चा बनने की ख्वाहिश लेके मेरे पास आया, मैं इसे बना दूं। अब गौर करें ना, देखे क्या है, बेसिक उस बच्चे की डिजायर है। आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, आपको कहा जाता है 3 महीने का मुराकबा करें, आपसे कहा जाता है कि किताब तस्करा कलंदर बाबा औलिया पढ़ें, आप ये सब करते हैं। क्यों करते हैं? क्या आपकी ख्वाहिश है कुछ? वो ख्वाहिश एक ये है कि जी मुझे एक बाबे की सरप्रस्ती मिल जाए, वो दुआगो होगा मेरे लिए। दूसरी ख्वाहिश ये है कि जब आप दाखला फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, तो वहां पे किस खाने में टिक करते हैं? अल्लाह के इरफान के लिए वो पूछा जाता है ना, आप सिलसिले में क्यों आना चाहते हैं, तो आप क्या फरमाते हैं? आप लिखते हैं कि मालो दौलत के लिए, आप लिखते हैं कि मौजज़ा और करामात सीखने के लिए, आप लिखते हैं कि मुझे जनाब ये कोई मावराई अलूम सीखने हैं। आप हमेशा वहां देखें जो बच्चा टिक करता है अल्लाह के इरफान के लिए, ये उन पर फर्ज हो जाता है, वो इसको अपनी ड्यूटी मानते हैं कि भाई ये बंदा अल्लाह को जानना चाहता है। ये बुनियादी ख्वाहिश जो बंदा भी रखता है उसको वो कबूल करके कोशिश करते हैं उसको बताने की, कि भी अल्लाह को जानने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे तुम समझ सकते हो, और वो तरीका क्या है कि आप मुराकबा करें। किसका मुराकबा करें? जब आप सिलसिले में बैत हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी तसव्वुर शेख करें। अब तसव्वुर शेख ये किया जाता है कि जी मैं बनफ्से नफीस खुद अब्बा हूं, यानी आप नकल करना शुरू कर देते हैं, नकल करने बैठ जाते हैं बाप की। अब जब हम ये नकल करते हुए मुराकबा करेंगे तो आप फायदा देखें कि आपको रफ्ता रफ्ता मुर्शिदे करीम की तर्ज फिक्र मुंतकिल होगी। जब उनकी तर्ज फिक्र से आप आरास्ता होंगे तो रफ्ता रफ्ता उनका जहन मुंतकिल होगा। फिर जब आप इसको जारी रखे रहेंगे क्या होगा, आपके अंदर उनकी सलाहियतें मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगी। फिर जब आप इसे भी जारी रखेंगे तो उनका इल्म भी मुंतकिल होता रहेगा। ये चार दर्जे हो गए। अब हम तसव्वुर शेख कैसे करते हैं? हम तसव्वुर शेख यूं करते हैं कि सामने मुर्शिद करीम बैठे हैं, एक बुत बना के मैंने मुर्शिद का वहां सामने सजा लिया और मैं अपना कम नाफ के ऊपर दोनों हाथ बांधे उनके सामने मुअद्दब बैठा हुआ। मुझे बताइए क्या हुआ? अब आप बैठे हुए जमूदनी तारी हो गया। लेकिन अगर आप खुद को मुर्शिद जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको उनकी नकल करना पड़ेगी ना। देखे ना, छोटे बच्चे, वो जो बच्चे बच्चियां गुड़ियां गुड़ियां खेलते हैं तो क्या करते हैं? वो अम्मा अब्बा की नकल कर रहे होते हैं। तो रफ्ता रफ्ता क्या होता है, उनके अंदर माँ बाप का जहन मुंतकिल होता है, माँ बाप की तर्ज फिक्र मुंतकिल होती है। इसी तरह रूहानियत भी यही कानून है, क्योंकि जब आप रूहानी स्कूल में दाखिला लेते हैं तो आप छोटे बच्चे बन जाते हैं। अब जब आप बच्चे बन गए तो आपने अपने आप को बाप की नकल करने पे लगा दिया। बच्चा क्या करता है? बड़ों की नकल करता है। वो नकल करते 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 उन्हीं के अंदाज में बोलना सीख जाता है, उन्हीं की तरह बोलता है, उन्हीं की तरह सोचता है, उन्हीं की तरह दलाइल देता है, उसका जहन बड़ा होता चला जाता है। यही अल्लाह के इरफान की तरफ जाने के रास्ते हैं। जब आपको मुर्शिद करीम का जहन मिल जाता है फिर वो रफ्ता रफ्ता आपको हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मतवजो करते हैं कि भी उनकी सीरत पढ़ें, उनकी बातें सोचें। आप उसको सोचते हैं तो आपका जहन और वसी होता चला जाता है। फिर वो रफ्ता रफ्ता आपकी तवज्जो दिलाते हैं कि भाई मेरी कफालत जो है मेरा अल्लाह कर रहा है, तो तुम्हारी कफालत भी तुम्हारा अल्लाह कर रहा है। फिर रफ्ता रफ्ता आपका जहन अल्लाह की तरफ मबजूल हो जाता है, मतवज्जो रहना सीख लेता है और आपको अल्लाह की कफालत का एहसास होता चला जाता है। जितना वो एहसास बढ़ता है आपको अल्लाह का इरफान हासिल होता रहता है। ये है सारा निजाम। अब इसमें क्या वो देखेंगे? वो यही देखेंगे कि भी ये बंदा सिलसिले में क्यों आ रहा है, ये वाकई अल्लाह के इरफान के लिए आ रहा है या ये सिर्फ दुआएं चाहता है। वो फिर दुआ दे देते हैं कि अच्छा अल्लाह खुश रखे भाई। ठीक हो गया जी?
जी बिल्कुल सर। मेरा एक सवाल और था आपसे।
इरशाद,
आप कहते हैं ना सबह का मानी है काम से लग जाना,
ड्यूटी से।
सुभान अल्लाह, ड्यूटी काम से,
सुभान अल्लाह।
तो आप जी इसके मीनिंग्स क्या होंगे?
सबह अन अल्लाह। असल लफ्ज पूरा क्या हुआ?
सुभान अल्लाह।
हम तो सुभान अल्लाह कहते हैं ना, इसके टुकड़े करें ना, तो ये क्या लफ्ज बना? सबह अन अल्लाह। हाँ, सारी ड्यूटियां अल्लाह के लिए, सारे काम अल्लाह के लिए। और करें, हमने कर दिया। पाक है वो जात किस चीज से पाक है?
हर बुराई से पाक है।
अब ये हमारी सोच है ना कि बुराई से पाक है। क्यों जी? बस यही पहला सबक है रूहानियत का कि बताई हुई बातों को इग्नोर करके तो खुद समझना शुरू कर दें। ये पहला लेसन है। आप हर बताई हुई बात को एनालाइज करें और खुद समझें। हजूर मुर्शिद करीम ने किताब रूहानी इलाज में लिखा है कि हम जिस मुआशरे में पल कर जवान होते हैं वो मुआशरा हमारा अकीदा बन जाता है
जी।
और हमारा जहन इस काबिल नहीं रहता कि इस अकीदे का तजजिया कर सके, हालांकि वो महज फरेब है। और करें, ये जुमला रूहानी इलाज किताब के पेशे लफ्ज में ढूंढ के निकाल के पढ़ें और समझें। क्या बताया उन्होंने कि ये मुआशरती तर्जें असल में क्या है, ये हमें असल इंसान से दूर किए हुए हैं। असल इंसान क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो असल इंसान है। तीन माह लगते हैं उसको मुआशरे को यहाँ पे इस दुनिया को देखने के लिए आंख खोलने में। 7 साल की उम्र तक वो हमारा ये जो मुआशरा है उसको क्या दर्श देता है कि ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, और उसका जहन इस करो और मत करो के को इतना बुरी तरह लिपटा लेता है कि उसका जहन इस काबिल नहीं रहता कि किसी बात को खुद सोच सके। मिसाल मिसाल ये है कि बच्चा सवाल पूछता है कि जी मैं कहां से आया, ईमानदारी से बताएं, कोई माँ उसको बताती कि तुम कहां से आए? उसको कहानी सुना दी जाती है कि तुम गए, हम अस्पताल गए थे, तुम वहां पड़े हुए मिले, हम कोई तुम्हें दरवाजे पे छोड़ गया था, वो अंग्रेजों के हाँ, ये सिर्फ मेरे और आपके मुआशरे में नहीं, अंग्रेजों ने वो कहानी घड़ी हुई है। सारस जो है वो पोटली में एक बच्चा उठा के लाया, हमारी गोद में डाल गया है, एक परी आई वो तुम्हें गोद डब्बे में लेकर आई और वो हमारे घर छोड़ गई। जरा गौर तो करें हम क्या कर रहे हैं। आप मजीद गौर करें क्या करते हैं हम भाई, क्या करते हैं हम बच्चों को कार्टून देखने पे लगा देते हैं। अब सबको पता है कार्टून झूठ है, हाँ या नहीं? आप गौर करें, पता है कि झूठ है, मना कर रहे हैं बच्चे को झूठ नहीं बोलना और दिखा क्या रहे हैं, झूठ। भाई कार्टून में कोई बात हकीकत होती है? लेकिन आप देखें कि मैं और आप बचपन से हमने कार्टून कितनी शौक और जौक से देखे, कभी ख्याल गुजरा? माँ बाप भी लगा के दे देते हैं टॉम एंड जेरी शो कि तुम इसे देखो, हैं? खुद भी बैठे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बच्चा समझता है कितनी अच्छी बात देख रहे हैं, उसको ख्याल ही नहीं रहता झूठ बोलना बुरी बात है। नतीजा पूरे मुआशरे में झूठ कितना फैला हुआ है कि माँ बच्चे के एक सीधे सवाल का जवाब देना गवारा नहीं करती, तो कहां से आ जाएगी हकीकत शनासी? हैं? आप बच्चे से तवक्को कर रहे हैं ये हकीकत पे बात करे, माँ खुद उसे झूठ बोल रही है। ये है मुआशरती शऊर। हमें इस 7 अरब आबादी के शऊर के दबाव का सामना है जो पर्दा बन के हमारी अकलों पे, हमारी बसारतों पे छाया हुआ है। हम जो सुनते हैं बस उसी को सुनते हैं और उसी को बिलीव करते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा शऊर खुद कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहता। ये जो मुराकबा किया जाता है इससे असल में क्या होता है, रफ्ता रफ्ता आपका जहन खुद सोचने के काबिल हो जाता है। जब आप अल्लाह की बात को खुद समझना सीख जाते हैं तो इसे कहते हैं रूहानी मरातब, कि जी ये रूहान दर्जा तय हो रहे हैं। बात समझ आई? सारा खेल क्या हुआ, सारा खेल ये हुआ कि आपका ध्यान आपकी तवज्जो। अब ये जो मैंने ये एहतमाम किया कि आप लोग सवाल पूछे, कोई शर्त लगाई कि कौन सा सवाल मत पूछे? नहीं, आप हर तरह का सवाल पूछें, जो जवाब मुझे आते हैं उन पे मैं बात करता हूँ, जिनका मुझे नहीं पता मैं माजरत कर लेता हूँ, नहीं इसका मुझे नहीं पता, मतलब है इसमें शर्मिंदगी की तो कोई बात नहीं है ना। मैं बेसिकली तो देखे ना, सारा कुछ तो नहीं जानता, जितना जानता हूँ उसकी रोशनी में बात करता हूँ। यानी मुझे ये कोई गुर्रा नहीं है कि मैं कोई बड़ा आलिम हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मैंने सिर्फ सोचने का ढंग सीखा, वो सिखाने बैठ गया।
जी सर।
अब अगर आपको ये सोचने का ढंग सीखना है तो क्या करने है? आपको सवाल ही आने आएंगे ना, तजस्स अल्लाह की सिफत मुहीत का अक्स हमारे अंदर तजस्सुस बन के लहराता है। तजस्सुस दरअसल किसी चीज का अहाता करने का। अब बच्चे के जेहन में सवाल आए, आगे से जवाब कोई देता नहीं है उसको। पूरे मुआशरे में, पूरे निजामे तालीम में देखें, स्कूल में बच्चे सवाल पूछते हैं, एक से दूसरा सवाल पूछे टीचर चांटा मार देता है। तो सीधी सादी बात है कि आपने सवाल को खुद गौर करना है, खुद जवाब से। अगर नहीं समझ आता तो किसी जिस पे आपको भरोसा हो कि ये मेरी कोई सोच में मदद कर सकता है, उसे शेयर करें, वो बात आपसे शेयर करेगा, अपनी सोच शेयर करेगा। उसकी सोच को अपनाना नहीं है, मैं वाजे कह रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी सोच अपनाएं, नहीं, आप मेरी, मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि आप इस पर खुद गौर करें, खुद गौर करें, खुद समझें। हजूर मुर्शिद करीम भी यही कर रहे हैं, वो बात कहते हैं, उसके बाद आप पे छोड़ देते हैं कि आप गौर करें, फिक्र करें, उनकी तर्जों को समझें, उनको अपना लें या रद्द कर दें, मर्जी आपकी।
शुक्रिया सर,
बहुत आपका शुक्रिया जी कि आपने इतने बुनियादी सवाल पूछे, बहुत ही अच्छा लगा।
शुक्रिया बहुत
जी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा सवाल ये था कि कुरान पाक में है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि 6 दिन में मैंने आसमानों को तहलीक किया, तो यहाँ यौम से क्या मुराद है? यानी वक्त तो सिर्फ आलम नासूत में है, ऊपर तो टाइम एंड स्पेस नहीं है, तो फिर 6 यौम से मुराद अल्लाह मियाँ क्या मतलब है अल्लाह मियाँ का?
ये जो है ना फी सित्तत अय्याम, यौम कहते हैं हालत को, यौम कहते हैं बनावट को। असल में 6 बनावटें हैं। अल्लाह कहता है मैंने पूरे इस कायनात को फी सित्तत अय्याम 6 दिनों में बनाया, यानी 6 दर्जों में बनाया, 6 डायमेंशंस में बनाया, या 6 किस्म की बनावटों से बनाया। मसलन आप देखें, आपके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर और नीचे, आपको इन 6 सिमतों का एहसास है? ये 6 सिमतें जो हैं, ये सित्तत अय्याम का एक दर्जा है। ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी तशरीह सुन लें। इन्हीं 6 लताइफ को, इन्हीं को 6 लताइफ कह के रूहानियत के जो स्कॉलर्स हैं, रूहानी माहिरीन हैं, उन्होंने समझाने के लिए कहा कि ये 6 लताइफ हैं, ये 6 बनावटें क्या हैं, 6 लताइफ हैं। अब उसको कैसे समझाया, मैं अगर इजाज़त दें तो आपको थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। अब रूह के 3 दर्जे बताए गए, रूह के, एक रूह है उसके 3 दर्जे, रूहे आजम, रूहे इंसानी और रूहे हैवानी। अब इन 3 दर्जों को आप 3 वर्क की तरह देखें, जैसे किताब के 3 वर्क हो, तो ये असल में कितने बने, 6 पेजेस बने। देखें ना, हर सफ़े की 2 सतहें हैं, एक ऊपर एक नीचे, फिर दूसरे सफ़े की भी 2 सतहें हैं, एक ऊपर वाले सफ़े के निचली सतह की तरफ है, दूसरा दूसरी सतह तीसरे सफ़े की ऊपर की सतह की तरफ है, और तीसरे सफ़े की निचली सतह दुनिया की तरफ है। क्या बता गया कि रूहे हैवानी के 2 दर्जे, एक दुनिया की तरफ, एक ऊपर अपनी रूह के दूसरे परत की निचली तरफ। यूं समझें कि ये 3 ग्लोब हैं। अब 3 ग्लोब्स को देखें। सबसे बाहर वाला ग्लोब जो है उसकी ऊपर की सतह जो है वो दुनिया है या दुनिया की तरफ है, उसके अंदर वाली तरफ जो है उसे लतीफा कल्बी कहते हैं, उसका रुख किधर है? वो ऊपर वाली सतह यानी नफसी को फीड कर रहा है और नीचे लतीफा रूही को यानी दूसरे ग्लोब की ऊपर वाली सतह की तरफ मतवज्जो है। अब दूसरे ग्लोब के अंदर की सतह का नाम है सिर्री, जो कि सबसे अंदर वाले ग्लोब की ऊपर वाली सतह जिसको खफी कहते हैं उसकी तरफ है, और फिर उससे भी अंदर यानी तीसरे ग्लोब के अंदरूनी सतह का नाम है अखफा, उसका रुख अपने मरकज की तरफ है जिसको तजल्ली जात कहते हैं। गौर करें, अल्लाह ने क्या बताया, मैंने छह सित्ताते अयाम छह बनावटों से बनाया। अब इसी बात को समझाने के लिए हजूर मुर्शिदे करीम ने और हजूर कलंदर बाबा औलिया ने इस बात को यूं वाजे किया कि भई चार चीजें हैं, ये तीन के हवाले से छह समझ आ गया। अब इनको चार के हवाले से देखें, चार से छह कैसे निकलता है, वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास, ये चार चीजें। इन चार को जब आप वहमे से ख्याल तक का सफर करते हैं तो ख्याल बनना ये एक बनावट हुई, ये है पहली बनावट। फिर ख्याल से तसव्वुर बनता है ये दूसरी बनावट हुई, तसव्वुर से एहसास बनता है ये तीसरी बनावट हुई। फिर जब आप किसी चीज को महसूस कर लेते हैं तो उस एहसासात के नतीजे में दोबारा तसव्वुरात बनते हैं, ये चौथी बनावट हुई। फिर दोबारा तसव्वुरात से जो ख्याल बन रहा है ये पांचवी बनावट हुई। जब ये ख्याल से वापस वहमे के दर्जे पे जाता है तो ये छठी बनावट हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऊपर से ये चार दर्जे गुजर के वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास बनते हुए तीन बनावटें बनी, व इन्ना इलैहि राजिऊन और ऊपर जाते हुए ये तीन बनावटें बनी, यानी एहसास से तसव्वुर बना, तसव्वुर से फिर ख्याल बना, ख्याल से फिर वहमा बन गया। अब एक इत्तला ऊपर से आ रही है, जो ऊपर से आ रही है इत्तला उसमें अलूमे लुदुनिया है, उसमें अलूमे लुदुनिया है यानी अल्लाह की तरफ से दिए हुए अलूम है। और जब हम इसे प्रोसेस कर लेते हैं एहसास से नीचे उतार के इसको डिस्प्ले पे ले आते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो ये वापसी का सफर जो है इसको, अब इसमें क्या होता है, इसमें अलूमे दुनिया होते हैं। अब ऊपर से आने वाली तला में अलूमे दुनिया है, नीचे से ऊपर जाने वाली तला में अलूमे दुनिया है। ऊपर जाकर टैली अल्लामिया ये करते हैं कि मैंने क्या इतला दी थी, इसने वसूल कैसे की। ऊपर से आने वाली तलाक का नाम है किताबुल मुबीन लोहे महफूज, और नीचे से जाकर इत्तला ऊपर रिकॉर्ड होती है उसका नाम है किताबुल मरकूम। दोनों को टैली किया जाता है, मवाजना किया जाता है। अगर ऊपर से आने वाली तलाक के मुताबिक जिंदगी बसर होगी तो आपकी किताबुल मरकूम लोहे महफूज के मुताबिक हो जाएगी, आप खुश होंगे। अगर उसके खिलाफ होगी तो वो सिज्जीन बन जाएगा। क्यों जी, ये सित्ता से अय्याम से बात फैल कर देखें, सारे चीजों को कवर अप हो गई
जी सर,
तो वाजे हो गई बात
जी सर, सोचेंगे
अभी, हमें बहुत सोचना है इस पे भी। जी आप जब ये इसको अपने नोटबुक में इसी तरतीब से लिख के इस पे सर दुखाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रूह को आराम आएगा।
सर हमारी रूहें भी बहुत बेचैन है, हर वक्त किसी ना किसी जस्तजू में लगी रहती है।
देखिए जी, रूह की असल बेकरारी ये है कि मैं अपने रब से कैसे मिलूं, बस और उसके लिए ये सारा जोर लगाना है। अब देखे मुर्शिदे करीम ने कैसा इंतजाम किया कि सारी बातें खोल के बयान कर दी। अब हजूर कलंदर बाबू आलिया ने ये सारी बातों की वजाहत किताब लौह कलम में कर दी, वो सारों ने मना कर दिया, नहीं भाई ये तो बड़ी मुश्किल है। मकसूद साहब सर पकड़ के बैठ गए, सारों को भांक रहे हैं कि खुदा के वास्ते इसको समझने के लिए हिम्मत पैदा करें। इसे मुश्किल कह के शऊर की शैतनत का शिकार मत हो। देखे ना, अगर मैं किसी चीज को मुश्किल करार दे रहा हूं तो मैं उसको समझूंगा? कभी भी नहीं। लेकिन अगर मैं उसके पीछे लग गया और उसको समझने में जुट गया तो अल्लाह ने क्या कहा, वह जाहिदु फीना, वो जो मेरे लिए मेरे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, सो बोलो ना, मैं उनके लिए राहें आसान कर देता हूं। ये अपने माइक ऑफ कर लें क्योंकि आपकी प्राइवेट गुफ्तगू यहां तक नशर हो रही है। जी जनाब, और कोई सवाल? हेलो
अब सर बात करना, एक ये सवाल है कि शऊर बहुत मुज़ाहमत करता है, बहुत ही मतलब तंग करता है, उससे कैसे काबू पाया जाए, ये बहुत मुश्किल है।
नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक छोटा सा जुमला सुना देता हूँ। आपका पड़ोसी बड़ा ही बदतमीज आदमी है, तंग करता है, हर वक्त शोर करता है, क्या करेंगे
जी?
क्या करेंगे? जाहिर है अगर आप मारपीट करेंगे तो शोर बढ़ेगा ना
जी।
तो क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपने भी अपने घर में रहना है। आप उसकी तरफ से कान डोरे कर ले, पंजाबी में कहते हैं तो अपने कान डोरे कर ले। देखें बड़ा सिंपल है, अगर मैं उस शोर में दिलचस्पी ले रहा हूं तो मेरी तवज्जो किधर हुई, मैं किसका शिकार हुआ, मैं शोर का शिकार हो गया। और अगर मैं अपने अंदर इतनी सी सकत पैदा कर लूं कि उसको इग्नोर कर दूं और अपने अंदर खोया रहूं, मैं अपनी कोई किताब पढ़ूं, अपना कोई गौर व फिक्र करूं, कोई बात सोचूं, या उनकी इस खबासत का तजिया करने लगूं कि इनका मसला क्या है, और फिर भला बकत देख के उनको जाके समझा दूं कि भाई तुम या वदूदो पढ़ के खुद पे फूंक लिया करो जब तुम्हें गुस्सा आया करे, ये गुस्सा शैतनत है। वरना आप खुद पे या वदूदो पढ़ के तो फूंक ही सकते हैं ना, फूंकते रहिए भाई, आप उन्हें मना नहीं कर सकते, तो खुद को तो शांत रख सकते हैं ना। यही तरीका है दुनिया से निमटने का, उसकी तरफ से तवज्जो हटाना सीख लें। ये कोई दुश्वार नहीं है, इसको दुश्वार हमारी उस दिलचस्पी ने बना दिया कि हम बाज नहीं रह पा रहे, हम दिलचस्पी लिए चले जा रहे हैं, रो भी रहे हैं। नहीं, हमें अगर दिलचस्पी से बाज आ जाएंगे तो कोई बुरी बात है? हमारी एनर्जी बचेगी या नहीं बचेगी? अब देखे ना हम कैसे बेशऊर हैं, कि हमें पता है कि इस बात में दिलचस्पी लेने से हमारी एनर्जी जाया हो रही है, लेकिन हम दिलचस्पी लिए जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ? हम अपनी एनर्जी जाया करना चाहते हैं तो किए जा रहे हैं। वो खुश हो रहा है जिसने दिलचस्प आपकी एनर्जी जाया करवा के खुशी किसको हो रही है? शैतान को। रही बात के इस मुसामत पे काबू पाना, ये हमने अपनी विल पावर से है, वहां दिलचस्पी ना लेना ये विल पावर है। इस विल पावर का इस्तेमाल करने के लिए ही ये सवाल पूछा गया जी, सांस की मशकें। ठीक ठीक है ना जी। तो बस मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर रहती है बात इंशाल्लाह।